आज के मुख्य समाचार जय भारद्वाज के साथ। मेलबर्न में आज दो नए कोरोना वायरस के मामले और दो की मौत, लेकिन खुल गई हैं दुकानें और रेस्टोरेंट्स। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाईकोर्ट में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की और ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच क्रिकेट मैचों की तारीखें घोषित। प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार से। विक्टोरिया में दो दिनों तक लगातार कोरोना वायरस का कोई मामला न आने के बाद आज दो नए मामले मिले और दो लोगों की मृत्यु भी हुई। हालांकि राज्य में आज से हॉस्पिटलिटी रिटेल के व्यापार खुलने के कारण दुकानदार ग्राहकों का स्वागत कर रहे हैं। घरों में भी मेहमानों को आने की इजाज़त है, लेकिन सिर्फ दो वयस्क और बच्चों के साथ। प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज कहते हैं कि बहुत से लोगों के लिए काम पर लौटना एक उपलब्धि है, लेकिन नियमों के पालन के साथ कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
I would just remind everyone that the rules still apply, and the rules, they're not against you, they're for you, so that you can continue to do these things. That's what the rules are there for, and we can keep going, opening up further, making further announcements.
न्यू साउथ वेल्स में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के स्थानीय रूप से संक्रमित एक नए मामले के सामने आने की खबर है, जिसके स्रोत के बारे में अभी जानकारी नहीं है। वहीं विदेश से लौटे 7 लोग होटल क्वारंटीन में कोविड पॉजिटिव पाए गए। प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजिकलिन कहती हैं कि वे विक्टोरिया के साथ सीमा खोलने के प्रति तत्पर हैं। उन्होंने 7 नेटवर्क से कहा वे सुनिश्चित करना चाहती हैं कि विक्टोरिया का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग है, जिससे सीमा खोलने के पश्चात कोई परेशानी ना हो।
Because it's easy to control the virus when there's no activity, when people can't move around, when people aren't working and socialising. The real test is once the restrictions are eased. And we are a courageous state in New South Wales, but we're also sensible.
Queensland की Premier Anastasia Palaszczuk ने New South Wales की Premier की आलोचना करते हुए कहा कि वे सीमा खोलने के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं। क्वींसलैंड सरकार शुक्रवार 30 अक्टूबर को अपनी सीमाएं खोलने की घोषणा करेगी। न्यू साउथ वेल्स की प्रीमियर ग्लैडिस बेरेजेकलिन ने क्वींसलैंड के अधिकारियों द्वारा राज्य के चुनाव से ठीक एक दिन पहले सीमा खोलने की घोषणा करने की आलोचना की थी, लेकिन सुश्री प्लाशे कहती हैं कि वे सीमाओं के मामले में स्वास्थ्य अधिकारियों की सलाह पर निर्भर हैं।
आई हैव द करेज टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट, आई हैव द करेज टू कीप क्वींसलैंडर्स सेफ, एंड अनफॉर्चूनेटली इट्स डिसअपॉइंटिंग to see the New South Wales Premier try to be political at this time when she has enough of her own issues to deal with. This is simply a diversion from what is happening with herself.
Prime Minister Scott Morrison ने High Court में दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की घोषणा की। विक्टोरिया के जस्टिस साइमन स्टीवर्ट ऑनरेबल जस्टिस जेफरी नेटले की जगह लेंगे, जो हाईकोर्ट से अगले महीने रिटायर होंगे। न्यू साउथ वेल्स की जस्टिस जैकलिन ग्लीसन मार्च में कार्यभार संभालेंगी, जब ऑनरेबल जस्टिस वर्जीनिया बेल एसी फरवरी में रिटायर हो जाएंगी। अटॉर्नी जनरल क्रिश्चियन पोर्टर कहते हैं कि जस्टिस ग्लीसन पूर्व मुख्य न्यायाधीश मरी ग्लीसन की बड़ी बेटी हैं।
A unique position. I'm told that's a first in common law countries. I might just pause very briefly and say that I note that because it's notable. But looking through the CVs of both Justice Stewart and Justice Gleeson, their families have played an enormous role.
खबर भारत की। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को 2+2 वार्ता के तहत मंत्री स्तरीय बैठक हुई, जिसमें बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका समेत कई अहम रक्षा समझौते हुए। आपको बता दें कि बेका समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी, साजो सामान और भू स्थानिक मानचित्र साझा कर सकेंगे। बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जबकि अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर इस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा शीर्ष सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदगी भी बैठक में रही। दोनों देशों ने कारोबारी, हिंद और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र की सुरक्षा, सामरिक एवं रणनीतिक सहयोग पर चर्चा की। बैठक के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री माइक एस्पर ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते हमारे साझा मूल्यों और हितों पर आधारित हैं। सबके लिए स्वतंत्र और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो, इसके लिए दोनों ही देश कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। खासकर चीन की बढ़ती आक्रामकता और अस्थिर करने वाली गतिविधियों के मद्देनजर मार्क एस्पर ने कहा कि दोनों देशों की बैठक में रक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने, रक्षा व्यापार को बढ़ाने और सेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग की बात भी हुई। खबर भारत की ही। भारत के बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार यानी आज सुबह भारतीय समय अनुसार 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि इन 71 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे कड़ी निगरानी के बीच कोविड-19 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए मतदान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज 2,14,84,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। NDTV की खबर के मुताबिक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। कुल 31,380 मतदान केंद्रों के लिए कई सेट में EVM और VVPAT का प्रबंध किया गया। उन्होंने बताया आज जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है उनमें से 35 संवेदनशील और कुछ अति संवेदनशील हैं, जहां मतदान सुबह 7 बजे से सिर्फ 5 बजे तक होगा। प्रस्तुत है करेंसी समाचार। ये समाचार मिलने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का मूल्य चल रहा था 71.37 अमेरिकी सेंट्स और 52.54 भारतीय रुपये। खेल की खबरों में IPL के 13वें सीजन का 47वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किया। सनराइजर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 88 रनों से मात दी। 220 रनों के विशाल लक्ष्य के आगे दिल्ली की टीम 19 ओवर में 131 रन बनाकर ही आउट हो गई। ये उनकी लगातार तीसरी हार थी। इस जीत में रिद्धिमान साहा और डेविड वार्नर की शानदार पारियां थी और फिरकी गेंदबाज राशिद खान का कमाल भी। साहा को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। दिल्ली कैपिटल्स की ये पांचवी हार रही। वह 12 मैचों में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गया। नेट रन रेट के आधार पर 14-14 अंकों के साथ मुंबई इंडियंस पहले स्थान पर है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दूसरे स्थान पर। आपको बता दें कि 11 नवंबर को IPL के फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ एक लंबी सीरीज के लिए 12 नवंबर को सिडनी पहुंचेगी। प्रस्तुत है मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी गुरुवार को पर्थ में धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान रहेगा 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 13 डिग्री। एडलेन में रुक रुक कर बूंदाबांदी, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में भी बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। होबर्ट में भी बारिश की संभावना, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस। कैनबरा में बारिश होगी, अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 9 डिग्री। सिडनी में तेज हवाएं, बारिश होगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री। ब्रिस्बेन में भी बारिश तूफान की आशंका, अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में बूंदाबांदी, अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।